ओम शांति ओम शांति। आज मुरली में प्यारे प्यारे बाबा ने संकल्प, निसंकल्प और विकल्प के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। कई बार बच्चे पूछते रहते हैं, ये संकल्प ठीक है, ये निर्विकल्प अवस्था कैसे बनेगी, या विकल्प क्यों आते हैं। बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से इस बात को क्लियर किया है। बाबा ने दूसरी बात कही कि बच्चों को बाप के साथ सच्चा रहना है, कुछ भी होता है बाबा को बता देना है, और कितना भी छिपाएंगे, कई कहते बाबा तो जानते हैं लेकिन छिपा तो नहीं सकते ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हारी जब निर्विकल्प अवस्था होगी, तुम्हारे पास कोई भी आएगा, विकारी संकल्प वाला या पापी कोई भी प्रकार के संकल्प लेकर के आएगा, लेकिन निर्विकल्प अवस्था होने के कारण उनके वो ऐसा प्योरिटी का अनुभव होगा। जैसे बाबा ने कहा, देवताओं के पास जाते विकारी और वहां उनको ऐसे प्योरिटी का, पवित्रता का अनुभव होता है, ऐसे ही कई आएंगे। क्योंकि तुम भी तो वास्तव में देखा जाओ तो गुप्त में देवताएं हो, क्योंकि तुम ही देवता बनने वाले हो। फिर बाबा ने सेवा के लिए बताया कि लौकिक में रहते हुए मित्र संबंधी आदि की सेवा तो करनी है, लेकिन सेवा में कौन सा पुरुषार्थ करना है वो भी बाबा ने बताया है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 23 दिसंबर 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निसंकल्प ही कहेंगे। अब क्या बताया कि जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। सबके प्रश्नों का उत्तर आ गया ना, व्यर्थ संकल्प क्या है और शुद्ध संकल्प क्या है। नीचे बच्चे जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते हुए भी अनासक्त रहो। इसका उत्तर है, मित्र संबंधियों की सर्विस भल करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। उसमें बहू की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो मोह की तो वह विकर्म बन जाता। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प चलता है तो वह भी विकर्म बन जाता है। कई बार कहते ना, इसकी सेवा करनी है, इसकी करनी है, फिर हम जाके ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे। बाबा कहते वो भी विकर्म बन जाता है। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो, जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निर्संकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता। बाबा ने पहले ही बता दिया, कौन सी बात? संकल्प, निसंकल्प और विकल्प, अर्थात कर्म अकर्म पर बाबा समझा रहे। आज तुम बच्चों को संकल्प विकल्प निसंकल्प अथवा कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारी संकल्प जरूर चलेंगे। जब तक इस दुनिया में है तो बाबा कहते तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई भी मनुष्य एक क्षण नहीं रह सकता। अब ये संकल्प भी यहाँ चलेंगे और सतयुग में भी चलेंगे। जब इस दुनिया में है, सतयुग में है, संगम पर, संकल्प तो चलेंगे ना, लेकिन कौन से संकल्प अकर्म बनते हैं और कौन से संकल्प निसंकल्प बनते हैं वो बाबा ने बताया है। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निसंकल्प ही है। यज्ञ की सेवा के लिए बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा को भी तो संकल्प चलते थे, बच्चों को पालना करना है, तो बाबा कहते वो संकल्प संकल्प नहीं निसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों प्रति चलते हैं वह विकल्प ही कहे जाते हैं, जिससे विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, वह निसंकल्प हो गया है? दूसरे जो संकल्प चलते हैं अज्ञानी, वो तो बाबा कहते यज्ञ या सेवा के प्रति चलते तो वह निसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले, सर्विस करनी है, इसका कल्याण करना है, बाबा कहते शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले वह विकल्प नहीं कहे जाते हैं। सेवा प्रति संकल्प चलता है तो गोया निसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, अब शिव बाबा बता रहे ब्रह्मा बाबा बैठा है, तो ब्रह्मा बाबा को ध्यान रहता था बच्चे आने वाले हैं, बच्चों की सेवा करनी है, बच्चों की खातरी करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है। तो बाबा कहते देखो ब्रह्मा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ उनकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प भी जरूर चलता। बाबा को भी चलता था, मम्मा को भी चलता था, बाबा को बताते थे बाबा इतनी पार्टी आने वाली है, तो उस समय तो जगह बहुत कम थी, तो बाबा खुद होकर के खुद खड़े होकर के स्थान बनवाते थे, कौन सा ग्रुप कहाँ ठहरेगा, कौन कहाँ ठहरेगा, बाबा खुद वो सारा कार्य कराते थे। और मम्मा भी प्रोग्राम देती थी, वो आते थे उनका प्रोग्राम क्या रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म भी नहीं बनता है। परंतु याद किसका विकारी संबंध, अगर किसी की याद, परंतु याद किसी का विकारी संबंध प्रति चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मित्र संबंधियों आदि की सर्विस भल करो, लेकिन कैसे, अलौकिक दृष्टि से। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं मित्र संबंधियों आदि की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से, वह मुंह की रग नहीं आनी चाहिए। कई बार इतनी मुंह की रग होती है, समझते सेवा करें, मुंह की रग के कारण सेवा भी करते हैं तो फिर कोई भी असर नहीं होता है, तो वह मुंह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए, परंतु जो यहाँ होते हुए भी कर्म संबंध में होते हुए भी उनको नहीं काट सकते हैं। फिर बाबा दूसरा रहम दिल बन के क्या बता रहे हैं, यहाँ रहते हैं, कर्म संबंध है, कई ऐसे कड़े हैं, लौकी की पूरा टाइम याद आता है, नहीं काट सकते हैं। तो बाबा ने इनको एक रहस्य एक बात कही कि लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। कई ऐसे होते हैं ना, ऐसे कड़े संबंध होते हैं, साथ और हाथ छोड़ के चले जाते हैं। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए भी कर्म संबंध में होते हुए भी उनका नहीं काट सकते, तुरे बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त हो जाए, चाहे बिल्कुल कम पद प्राप्त हो, लेकिन सतयुग में आ जाएंगे तो बाबा कहते हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है, हर एक को चेक करना है कौन सी कमी है। अब हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो बाबा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो जरूर वे देह अभिमानी ठहरा। जिसमें विकार नहीं है वह सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं, बाबा ने आज नाम नहीं लिया, बाबा हमेशा कभी किसका किसका नाम लेते हैं। बाबा कहते जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं। तो बाबा उनको उत्साह दिलाते हैं, वह सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, कभी सुना होगा, याद आएगा कि उन्हों की अवस्था क्या है। जिनको ना काम क्रोध लोभ मोह कोई भी ऐसा बंधन नहीं है, उनकी अवस्था क्या है, ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है। वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब बाबा पूछें कि कौन इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, कौन इस बात में नंबर वन है, बाबा कहते बाबा तो क्या तुम बच्चे भी वोट देंगे, वह सब भी तो तुम वोट देंगे। अब वह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते, कौन सी बात कि कौन किस प्रकार से उसकी अवस्था है, उसमें ये विकार नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे भी जान जाते हो। अच्छे को सब अच्छा ही कहेंगे, जिसमें कुछ खामी होगी क्या उसको सभी वोट देंगे, खामी होगी तो वोट क्या देंगे, अरे भाई ये तो ऐसा ही है। अब ये निश्चय करना है जिसमें कोई विकार है वो सर्विस कर नहीं सकते, बल्कि कितना भी ज्ञान सुनाते रहे उसका रिजल्ट नहीं निकलता ना। जो विकार प्रूफ है वह सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत पानी चाहिए, विकल्प पूर्ण जीत चाहिए, विकल्पों पर भी पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निर्संकल्प कह सकते, सेवा अर्थ बाबा की याद के निमित्त जब भी संकल्प चलते हैं तो बाबा कहते इसको निर्संकल्प कह सकते। वास्तव में निर्संकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं। दुनिया में ऐसे कहते हैं ना कि कोई निर्संकल्प मीन्स कोई संकल्प ना चले, दुनिया में लोग कहते हैं संकल्प ही ना चले। कई बाबा के भोले वाले बच्चे योग में बैठते संकल्प चलते हैं, क्या करे संकल्प चलते हैं। अब संकल्पों का भी वेरिफिकेशन बाबा ने कर दिया, कौन सा संकल्प बाबा की याद में है तो निर्संकल्प अवस्था, कौन सा संकल्प बाबा की सेवा में है कल्याण प्रति तो निर्संकल्प अवस्था हो जाती। निर्संकल्प अवस्था तो लास्ट में होगी, लेकिन जब तक है तब तक तो ये चलेंगे ना, लेकिन कोई फालतू संकल्प है वो विकल्प कहलाते हैं। निर्संकल्प उसको कहा जाता है जो संकल्प चले नहीं, सुख दुख से न्यारा हो जाए। बाबा कहते ये तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुक चुक कर चले जाते हो वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में, कहाँ पर परम धाम में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो, कहाँ पर, परम धाम में, लेकिन फिर सतयुग में आते तो वहां संकल्प तो करते हैं ना। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने। अब बाबा ने क्यों बताया, सारी दुनिया को पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो बाबा कहते यहाँ तुम्हारा शुद्ध संकल्प जरूर चलेगा क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। कर्म करेंगे, सोचेंगे, संकल्प करेंगे, लेकिन वो कर्म बंधन नहीं बनता, संकल्प विकल्प नहीं बनते, क्योंकि शुद्ध है ना। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता है। समझा कि अब कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही समझा सकते हैं, वही विकर्मों से छुड़ाने वाला। कर्म अकर्म विकर्म की गति कौन समझाते, बाबा ही क्लियर करके बता रहे। दुनिया वाले तो क्या क्या बोलते ना, तो बाबा कहते वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए क्या करना है, इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो। कौन सी सावधानी, कि हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, कई आते हिसाब किताब चुकतू करने और कई आते हैं कई प्रकार के हिसाब किताब जोड़ लेते। कैसे जोड़ते हैं, यहाँ आते ना सेवाधारी है, यहाँ रहते जो भी आते हैं उनसे अपने कनेक्शन जोड़ लेते। उनसे दादी हमेशा कहती थी कभी भी किसी का टेलीफोन नंबर नहीं लो, टेलीफोन नंबर ले लेते हैं फिर वहाँ उनसे बातें करते रहते हैं, मोबाइल का नंबर लेते हैं बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, फिर उनसे लेन देन में आ जाते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं कि आप हमको इतना पैसा दे दो, हमारे वहाँ सेंटर बन रहा है, हमारे ये बन रहा है, हमको ये सेवा करनी है, और चुपचाप उसको दे देते हैं। फिर दे देते हैं, फिर जब वापस मांगते हैं तो मिलता नहीं, फिर आके हमको बताते हैं बहन जी हमसे वो इतना पैसा ले गया। अरे जब देने के टाइम में क्यों दिया, तो इसलिए आज ये पक्का करना है। बाबा कहते किसी से भी कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रखना है, ना ज्ञान की लेन देन करो, इधर उधर की बातों की नहीं करो, किसी से पैसे की लेन देन नहीं करो, चीजों की लेन देन नहीं करो, और साथ साथ ये भी लेन देन नहीं करो कि हमारे पास ये है तुम ले जाओ। ये भी बाबा कहते हिसाब किताब बनता है, इसलिए इस हिसाब किताब को चुकतू करने आए, घर का सारा छोड़ करके आए हैं, और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कोई भी किसी से भी पैसे की लेन देन, मकान की, जमीन की, कोई भी प्रकार की लेन देन नहीं करनी है। अगर किसी को कुछ करना भी है तो यज्ञ में करे। यहाँ आप देख रहे ओम शांति भवन का रेनोवेशन हो रहा है, किचन का हो रहा है, उसके प्रति करे, लेकिन आपस में कभी भी पैसे की लेन देन करके अपना हिसाब किताब विकारी तो नहीं कहेंगे, अपना हिसाब किताब ऐसा नहीं जोड़ो जो चुक तो करना पड़े। इसलिए बाबा इस बात का पक्का ध्यान कराते हैं। तो अभी आपको बता रहे कोई भी मांगे बिल्कुल नहीं देना है, और कितना भी कोई कहे यहाँ सेवा स्थान के लिए चाहिए वो भी किसी को नहीं देना है। सेवा स्थान के बच्चे बहुत हैं, वो करते हैं, नहीं तो बाबा बैठा है और निमित्त टीचर भी बैठी हुई है। इसलिए निर्संकल्प होकर के बाबा के कार्य में जिसको सफल करना करो, नहीं तो बंधन नहीं जोड़ो, ये बहुत कड़ा बंधन है। तो बाबा क्या बता रहे हैं, वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो, तुम यहाँ आए हो, बोलो सब यहाँ आए हो, हिसाब किताब बोलो 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 ना, हिसाब किताब चुकतू करने, ना कि आगे बोलो, ना कि हिसाब किताब बनाने। तुम यहाँ आए हो अपना हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे नहीं यहाँ आकर के भी हिसाब किताब बनाते जाओ, जो सजा खानी पड़े। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है, वो सजा भी है। फिर बाबा कहते गर्भ जेल की सजा भी कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर भी जीत पानी है। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक निर्संकल्प अथवा सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तो तुम अपने को जानते हो। कोई कहेंगे ना बाबा जानता, बाबा कहते बाबा तो जाने लेकिन तुम भी तो जानते हो ना, ये तो तुम अपने को जानते हो। जो खुद को नहीं समझ सकते तो वह मम्मा बाबा से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम भी उनके वारिस हो, वह तो बता सकते हैं, बाबा बता सकते ना कि तुम्हारी अवस्था कैसी है, वह तो बता सकते हैं। निर्संकल्प अवस्था में रहने से तो अपने को तो क्या, किसी के विकारी विकर्मों को भी दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे पास आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। बाबा ने पहले भी बताया था, आगे चलकर के ऐसा संकल्प आए, ऐसा समय आएगा कि कई विकारी आएंगे, और बीच बीच में कई ऐसे भी आएंगे जो आपके थॉट की परीक्षा लेने के लिए आएगा, और कोई तो वैसे भी विकारी आएंगे, लेकिन आपकी अवस्था निर्संकल्प होगी तो उनके विकारी संकल्प जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दादियां भी बताती थी कैसे कैसे विकारी शुरू में आते थे, और ऐसी उनकी दृष्टि होती थी, दादियों की इतनी पावरफुल दृष्टि होती थी, वो एकदम बिल्कुल उनके विकारी संकल्प खत्म हो जाते थे। तो बाबा ने कहा ऐसा भी समय आएगा, किसी भी विकारों की विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है तो उनके सामने जाते ही शांत हो जाता है, वैसे तुम भी गुप्त रूप में कौन हो, देवताएं हो, तुम ही देवता बनने वाले हो ना, वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प चल नहीं सकता, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो वार नहीं कर सकेगा। दो बातें बताई कि अगर आपकी अवस्था इतनी पावरफुल है, पहले तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा, अगर किसी का थोड़ा बहुत चला भी तो बाबा कहते लेकिन वो विकारी संकल्प आपके ऊपर वार नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता है। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे, देखो बच्चे तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे सिर आहुति नहीं दी है, यहाँ ही यहाँ का योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं, कायदे सिर आहुति नहीं दी है, उसका कारण क्या है, उनका योग परम पिता से जुटा हुआ नहीं है, सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देही अभिमान होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते, स्वभाव में भी आ जाते हैं, टक्कर लेते हैं, पूरा टाइम कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना, तो बाबा कहते देही अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते हैं, अर्थात परमात्म अर्थ सर्विस करने के अधिकारी बन नहीं सकते। कितना भी कम सेवा कर रहे हैं, बल कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा तो नहीं कर पाते ना। तो बाबा रिजल्ट बता रहे हैं, अर्थात परमात्मा आज सर्विस करने के अधिकारी बन नहीं सकते हैं। तो जो परमात्मा से सर्विस ले, सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन बना रहे हैं, वही मेरे पक्के बच्चे हैं। बाबा के पक्के बच्चे कौन हैं? बाबा से पालना लेके औरों की पालना कर रहे हैं, वही मेरे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर के तुम्हारा बाप बना। वैसे भक्ति में पुकारते हो माता पिता हैं, बाबा के तेवे संगम युग में बाबा तुम बच्चों का बाप बन के पालना करे। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना, उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त करना। शुरू शुरू में कई बच्चे आए, पहले तो समझे, बाद में संकल्प आया, ये बाबा कैसे समझा सकते हैं। तो ये संकल्प किया तो फिर जैसे कि वो चले गए। तो बाबा कहते हैं, उस बाप को साधारण रूप में न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त करना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे। तैयार हो चुके हैं, हो भी रहे हैं, तो हो चुके हैं गुप्त रीति से, लेकिन बाबा कहते हैं अभी सामने प्रत्यक्ष नहीं करेंगे ना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी, बाकी जो पड़े हुए नहीं होंगे वह अपनी ही बर्बादी करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये निश्चय जानना, तो कोई ईश्वरीय यज्ञ में छिप कर काम करता है तो उनको जानी जानाधार बाबा देख लेता है। फिर बाबा क्या, कई तो कहते निश्चय है छिप के काम करता है, कई तो सोचते बाबा देखिए कैसे देखते, लेकिन उसकी अवस्था से तो बाबा जान जाते थे ना, तो जानी जान हर बाबा है, तो बाबा जान भी लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है सावधानी देने अर्थ। शुरू की कितनी कहानियां सुनी हुई है, कोई भी ऐसा करता था पुरुषार्थ ऊपर नीचे होता था, तो शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा उनको सावधानी भी देते थे, शिक्षा देते थे, और अभी भी गुप्त रीति से देते ही रहते हैं। तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, भल भूलें होती हैं, परंतु उसको बताने से आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना, बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ, वह आई एम, मैं कौन हूँ, हु एम आई है, मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर को नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाता है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाता है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी में आ जाए। बच्चों को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता। बच्चे जब जानते मेरा बाप इतना ऊंचा है, तो उनको बहुत खुशी रहती है, नशा रहता है। अब देखो कोई बड़े अमीर घर का बच्चा होगा तो उस स्वरूप में रहता है ना। तो बाबा कहते हैं जब बच्चे बाप के ऑक्यूपेशन को जानते हैं तो बहुत खुशी रहती है। जब तक छोटा है बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। खुश तो रहेगा लेकिन उसको ये पता नहीं, नशा नहीं रहता कि मेरा बाप इतना बड़ा ऊंच है। जैसे बड़ा होता जाता है बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ जाता है तो वो नशा वह खुशी चढ़ती जाती है। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना, बाबा क्या करते हैं, क्या देते हैं। तो बाबा कहते पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है। अब बताओ हमारा बाबा कौन है, कहाँ रहता है। अगर कहीं आत्मा से मर्ज हो गई तो आत्मा विनाशी हो गई तो खुशी किसको आएगी। आत्मा ही मर्ज हो गई तो फिर आत्मा को तो खुशी नहीं हो सकती ना। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं उनको पूछना चाहिए तुम यहाँ क्या पढ़ते हो। आते ना तो बाबा की तो उनका ऑक्यूपेशन पूछो, क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या कर रहे हो इस दुनिया के अंदर, इससे तुम्हारा क्या स्टेटस मिलता है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तुम पर विश्वास करेंगे ना बरोबर ये पढ़ रहे। जैसे बाबा क्यों बता रहे हैं, यहाँ कहेंगे ना हम पढ़ाई पढ़े देवता बनने के लिए, सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। बाबा कहते उनको जब वो करते हैं डॉक्टर बन रहे, पढ़ रहे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो बाबा कहते उस पढ़ाई पर विश्वास होता है ना। यहाँ भी स्टूडेंट बताते हैं ये है दुख की दुनिया, जिसको नरक हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं। उनके अगेंस्ट है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये तो सभी जानते भी हैं, समझ भी सकते हैं। बाबा कहते ये स्वर्ग नहीं है, ये नरक है अथवा दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो पुकारते हैं हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। ये तो समझ रहे ना, आज भी समझ रहे कि दुनिया की हालत क्या होगी, क्या होगा इस दुनिया का, इसलिए पुकारते रहते हैं हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वह जानते हैं हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। बाबा कहते मैं थोड़ी एक एक नए नए को बैठ के पढ़ाऊंगा, बच्चे ही उनको पढ़ाते, बच्चे ही उनको समझाते, फिर बच्चे उनको तैयार करके बाबा के पास लाते। तो बाबा कहते हैं तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वे अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन तो बता सकते हैं, बाप थोड़ी अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। अब बाबा थोड़ी बैठेंगे बैठ के बताएंगे मैं ये करता हूँ, बच्चे ही तो बताएंगे ना, तो बच्चे ही औरों की सेवा करेंगे, बाप थोड़ी अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। टीचर अपनी मेहमान खुद सुनाएगा क्या, वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे। ये टीचर्स ऐसा है, जिस स्कूल में टीचर अच्छा पढ़ाता है तो स्टूडेंट बताते हैं, और वहां का क्लास का रिजल्ट अच्छा होता है तो चारों तरफ नाम रोशन होता है, तो स्टूडेंट बताते हैं ना हमारा टीचर बहुत अच्छा है, तो फिर क्या कहते हैं स्टूडेंट टीचर का नाम शो करते हैं। वह तो इसलिए वह तो स्टूडेंट सुनाएंगे ये ऐसा टीचर है, तब तो कहते हैं ना स्टूडेंट्स शो मास्टर। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो तुम्हारा काम है नयों को बैठ समझाना, बाकी जो टीचर बीए एमए पढ़ा रहे हैं वह बैठ नए स्टूडेंट को ए बी थ्योरी सिखलाएंगे। अब हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई पढ़ाने वाला वो बच्चों को थोड़ी एबीसी सिखाएगा। तो बाबा कहते बाबा तो हाईएस्ट टीचर है, वो थोड़ी नए नए को पढ़ाएगा, उनको कौन पढ़ाएगा, तुम बच्चे ही पढ़ाएंगे। कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं जो दूसरों को भी पढ़ाते, लौकिक में भी हम देखते हैं कई स्टूडेंट इतने होशियार होते हैं जो क्लास के अन्य स्टूडेंट को पढ़ाते, दूसरी क्लास के स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं। उसमें माता गुरु तो मशहूर है, ये है डीटी धर्म की पहली माता जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की महिमा बहुत है, बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी इन चार देवियों की बहुत पूजा करते। काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी इन चार देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अगर चार माताएं हैं तो उनके चार पति भी होने चाहिए। अब बाबा कहते हैं दुर्गा का पति कौन है ना, जैसे लक्ष्मी का है नारायण, दुर्गा का कौन है, लक्ष्मी का तो बता देते हैं। अगर चार देवियां हैं तो उनके चार पति भी होने चाहिए। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है, काली का पति कौन है, शंकर, किसी ने बोला शंकर, लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। फिर किसी ने जवाब दिया होगा बच्चे ने शंकर, बाबा कहते शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं, पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत से जो काली को पूजते हैं, वहां कलकत्ता में बंगाल में काली देवी की बहुत पूजा होती है, जो गए हैं देखा भी होगा, उसका रूप इतना भयानक है, जीभ बाहर निकली हुई, रूप को देखते, लेकिन भावना है तो भावना का फल भी मिल जाता। लेकिन बाबा कहते काली का रहस्य क्या, वो तो बाबा ने बताया ना। तो बाबा कहते हैं बहुत जो काली को पूछते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता ही नहीं है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, ये कोई को भी पता नहीं है। तुमको समझाना है दुनिया ये एक ही है, जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वही फिर सत्यु में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इस सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे, बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है ही नहीं। जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है, उनके चित्र यहाँ है तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के चित्र है, बाबा कहते हैं जरूर, लेकिन वो यहाँ ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता, सारा खेल जो है इस सृष्टि पर ही चलता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है, सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। सूक्ष्म वतन भी संगम युग में मालूम पड़ता, बाकी उसकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। इस साकारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तो बाबा बता रहे हैं सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं, लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अलफ सिखाना। अलफ मीन्स बाबा का परिचय देना। तो कभी कभी बाबा कहते थे जब तक बाबा को ना समझे, परमात्मा को ना समझे, उनको आगे ले ही नहीं जाना। तो आज बाबा ने कहा परमात्मा को नहीं समझता तो आगे ज्ञान भी नहीं उठा सकता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन सब बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अलफ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। बे मीन्स बादशाही, अलफ है गॉड, वे सुप्रीम सोल। जब तक ये पूरा नहीं समझा है तब तक परम पिता परमात्मा के लिए लव नहीं जागता है, वह खुशी नहीं आती है कि परमात्मा हमारा पिता है, उनसे हमको क्या मिलता है, ना प्यार आएगा ना खुशी आएगी। क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। कौन सी बात को, कि बाबा हमारा पिता है और वो हमारे को सुख देता है और हमारे दुखों को दूर करता है। तो बाबा कहते हैं जब उनके ऑक्यूपेशन को जाने तब खुशी में आवे। तो खुशी है पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है, तो हम उनके बच्चे क्यों नहीं वह खुशी आनी चाहिए। परमात्मा एवर हैप्पी, आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप तो क्या आनंद का सागर है। तो बाबा कहते फिर हमें ये तो होना चाहिए ना, जब हम उनके बच्चे हैं तो हमें भी क्यों नहीं खुशी आनी चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं ये गुदगुदी क्यों नहीं होती है? जब किसको खुशी होती है अंदर ही अंदर उसकी स्थिति देखो तो इतना जैसे उसको गुदगुदी होती है। तो बाबा कहते गुदगुदी मीन्स खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए। बाबा को जब खुशी हो, जब बच्चे को खुशी होती ना, कितना वो इतने प्यार से हंसता है, इतना प्यार से खुशी में झूमता है। तो बाबा भी कभी कभी प्यार के बाबा केशी बाबा के प्यार में खो जाते थे तो बाबा इतने खुशी के स्वरूप में दिखाई देते थे जिसको बाबा कहते गुदगुदी। तो बाबा कहते हैं मैं गुदगुदी क्यों नहीं होती है, आई एम सन ऑफ गॉड। आज बाबा के सामने कोई बैठा होगा बाहर से आया हुआ तो बाबा बता रहे हैं आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। परमात्मा का बच्चा होने के कारण मैं सदा ही खुश हूं। वह खुशी नहीं आती तो सिद्ध है कि अपने को सन अथवा बच्चा नहीं समझते हैं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। परमात्मा इतना सदा ही खुश है, खुशी का सागर है, मैं उसका बच्चा फिर मैं क्यों नहीं खुश हूं। तो बाबा कहते गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते हैं। बात तो बहुत सहज है, कोई को ये ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती। बाबा ने पहले भी बताया था जो दूसरे धर्म वाले आएंगे वो ज्ञान की बातों को इतना नहीं समझेंगे, आएंगे जरूर आकर के शांति में बैठेंगे। हम देखते हैं विदेशों में होता है कहाँ का कई देशों के अंदर अन्य धर्म के आते हैं, उनको मेडिटेशन इतना अच्छा लगता है, घंटा घंटा बैठे रहते हैं, ज्ञान की बातें ज्यादा नहीं समझते, क्योंकि बाबा ने कहा वो आएंगे अपनी अंजलि लेने के लिए आएंगे और अपने धर्म में जाकर के ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते कोई को ये ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है, बस इस अल्प को जानकर साइलेंस में रहें तो वह भी अच्छा है। बाबा को जाने शांति का अनुभूति करें, बाबा कहते उससे भी वो ऊंच पद पा सकते हैं। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परम पिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहें तो भी अच्छा है। उनकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते। कितनी बड़ी पॉइंट, बाबा की याद से परमात्मा की याद से हम बच्चे तो बनते हैं, तो सारी दुनिया के लोग यहाँ तक के सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे याद तो कर नहीं सकते हैं, वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए सन्यास करते हैं। होली बन जाती है तो उसमें सुख है ना, तो बाबा कहते पवित्र बनते हैं, तो बाबा कहते पवित्र बनते तो उसमें सुख की अनुभूति होती है, घर में रहते तो बाल बच्चों में मोह हो जाता ना, तो बाबा कहते वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा इसलिए तो सन्यास करते हैं। होली बन जाते तो उसमें सुख तो है ना, सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना है ना, आदि देव कौन, ब्रह्मा बाबा भी तो सन्यासी बना है ना, ये सामने उनका आदि देव का मंदिर खड़ा है जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का सन्यास करो, त्याग करो। वह सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते हैं। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे, गृहस्थी कोई महात्मा नहीं कहलाते हैं, महात्मा है तो वो कहलाते जो सन्यास करके पवित्र बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वह सन्यास कर जाते हैं तो महात्मा बन जाते हैं, गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है, सन्यास करते ही है सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते, पवित्र बनते हैं परमात्मा को याद करते हैं तो दुख की तो बात ही नहीं है ना। तो बाबा कहते महात्मा कभी दुखी नहीं होते हैं। राजाएं भी तो सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते। द्वापर युग में कई कई राजाएं द्वापर द्वापर युग के अंत में कई कई राजाओं ने त्याग किया और सन्यासी बन गए। ताज आदि सब कुछ जो भी था, राजमहल का भी त्याग किया, ताज आदि छोड़ दिया। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं, जैसे गोपीचंद ने सन्यास किया। राजा गोपीचंद की बहुत कहानियां आती है, क्या उसकी माँ ने उसको कितना प्रेरणा दी और कितने उसको शिक्षाएं दी। तो बाबा बता रहे हैं जैसे राजा गोपीचंद ने सन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है, तब तो उसने किया ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना। कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरा, स्टूडेंट शोज मास्टर जो पढ़ा रहा है वह दूसरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी, गॉड की बच्ची है, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। आज का वरदान, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भाव। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भाव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वो क्या बन जाते हैं? वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्म सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। जब आराम है तो आत्मा निश्चिंत होती है, आराम नहीं है तो आत्मा भी कुछ कुछ फुटफुट करती रहती है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। कोई भी प्लान बनाते हैं, बालक और मालिकपन की स्टेज रहे। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अभी आज का व्यक्ति इशारा जो टाइटल चल रहा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अपनी हर कर्म ले की शक्ति को इशारा करो, तो इशारे से जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्म इंद्रिय जीत बनो, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हर कर्म इंद्रिय जी हजूर जी हाजिर करती हुई चले। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करते रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति। आप सभी को मालूम हो इस वर्ष का अंतिम समय चल रहा है, नया वर्ष भी अभी थोड़े ही दिनों में आरंभ हो जाएगा। इस वर्ष में के लास्ट टर्न में, बाबा के टर्न में दिल्ली और आगरा की सेवा का टर्न है, और दिसंबर के दिनों में जब होते हैं लास्ट दिसंबर में, खास करके विदेश के भी कई भाई बहनें आते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल यूथ ग्रुप की, के भारत के नहीं विदेश के यूथ ग्रुप की रिट्रीट होती है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन ग्रुप की रिट्रीट होती है, और विदेशी भाई बहने भी बहुत आते हैं, और इस ग्रुप में नया साल मनाने के लिए भी बहुत भाई बहने आते हैं। तो ज्ञान सभा में भी फूल जाएगा, पांडव भवन में भी फूल जाएगा, बाकी जो भी है सब के सब नीचे रहेंगे। कभी कभी कहते ना यहाँ आके रहना है, वो आप सब देख रहे हैं कि चारों तरफ कुछ थोड़ा थोड़ा काम भी चल रहा है, इसलिए जो भी कहते हैं सब के सब नीचे रहे और बाबा के घर आकर के चारों धाम की यात्रा करके जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, जो भाई बहने एक रात के लिए नीचे से आए वो हाथ खड़ा करें, अभी नहीं आए क्योंकि थोड़े ही आए हैं और नया ग्रुप अभी शुरू हो जाएगा। आपको फिर से बता रहे हैं कि सभी का सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, और आज से डबल विदेशी भाई बहने भी आने आरंभ हो रहे हैं, उनका जो प्रोग्राम होगा वो कल से स्टार्ट होगा, उसके बारे में कल से ही जानकारी देंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।